नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के गुना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता ने कल विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें शर्म नहीं है। इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी की ओर से तलब किए जाने के बाद से आम आदमी पार्टी उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका जाहिर कर रही है। पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। इस बीच भाजपा के एक बड़े नेता ने सनसनीखेज दावा किया है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आबकारी नीति के शुरुआती शिकायतकर्ताओं में शामिल सिरसा ने कहा कि ये बात उनको आम आदमी पार्टी के ही एक नेता ने बताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। राष्ट्रपति ने मंदिर में भगवान बद्री विशाल की करीब 25 मिनट तक पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इससे पहले मुर्मू भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ में सेना के हेलीपैड पर पहुंची, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी अगवानी की। इस दौरान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे। यहां से राष्ट्रपति काफिले के साथ सीधे मंदिर पहुंची और मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा की। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी एवं वेद पाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी विधिवत पूजा संपन्न करवाई। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय की अगुवाई में अन्य पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को बद्री विशाल का प्रसाद एवं अंग वस्त्र भेंट किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते केजरीवाल सरकार ने समय से पहले शीतकालीन छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 9 से 18 नवंबर तक सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी, जबकि 19 नवंबर को रविवार है। इसका मतलब है कि अब स्कूल 20 नवंबर को खुलेंगे। इससे पहले 5 नवंबर को सरकार ने 5वीं तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया था। हालांकि 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को कोई आदेश नहीं मिला था, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया गया था। 12 नवंबर को दिवाली है, इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ने की संभावना है। दिल्ली के स्कूलों में विंटर ब्रेक की छुट्टियां दिसंबर जनवरी के महीने में होती हैं, लेकिन प्रदूषण के चलते इस बार सरकार ने काफी पहले सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। दिल्ली सरकार का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए है। चूंकि अदालत याचिका खारिज करने के पक्ष में थी, याचिकाकर्ताओं ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसके द्वारा प्राधिकारियों ने यहां यमुना के तट पर छठ पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वकील विजय शंकर दुबे के माध्यम से दायर याचिका में प्राधिकारियों को विभिन्न घाटों के साथ ही यमुना नदी के तट पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। वायु प्रदूषण से बेहाल दिल्ली में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 460 रहा, जबकि मंगलवार दोपहर AQI 455 था। वहीं कल रात आनंद विहार में AQI अधिकतम स्तर 999 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों ने बताया कि पिछले 5-6 दिनों से आने वाले ज्यादातर मरीज खांसी, सर्दी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं के साथ आ रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा है मुंडका। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पश्चिमी दिल्ली के औद्योगिक इलाके मुंडका में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच 7 दिन का AQI औसत 446.43 दर्ज किया गया, जिसके बाद से यहां के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अब भीड़ बढ़ गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मानव तस्करी मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक छापेमारी कर रही है। NIA की टीम जम्मू कश्मीर के जम्मू और संबा शहर के कई शहरों पर छापेमारी कर रही है। वहीं असम के गुवाहाटी में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एनआईए के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जिन 10 राज्यों में एनआईए की ये कार्यवाही चल रही है उनमें त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने बुधवार को देश की राजधानी नई दिल्ली सहित कश्मीर के अलग अलग जिलों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये कार्यवाही आतंकी फंडिंग मामले से जुड़ी हुई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।